That song that we sang for the children.
जो हमने बच्चों ने जो गीत गाया.
There is a word in that sentence in that that says that more and more of Jesus.
जिसमें उन्होंने कहा था, उसमें एक पंक्ति थी कि जिसमें बताया था कि मुझे मेरे जीवन में यीशु मसीह और भी ज़्यादा चाहिए.
I don't know how much the children understood, but it's such a challenge. That is our goal of our lives.
ये तो पता नहीं कि बच्चों ने इस बात को कितना समझा है, लेकिन ये हम सभी बड़ों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि हम अपने जीवन में प्रभु को कितना आप चाहते हैं और कितना उसे जीवन में पा चुके हैं.
मोर एंड मोर ऑफ जीसस एंड लेस एंड लेस ऑफ मी.
ज़्यादा से ज़्यादा मसीह मेरे जीवन में कार्य कर रहा है और मैं अपने आप में कम हो रहा हूँ.
एज मच एज आई लाइक जॉन सेड, एज मच एज आई डिक्रीज, दैट मच मोर Jesus can come in me and the life of Jesus can be reflected in my life.
जैसे यहुन्ना ने बपतिस्मा करने वाले उसने कहा था कि मुझ में जो मसीह है वो बढ़ता जाए और मैं दिन प्रतिदिन घटता जाऊं.
When our children are born, we don't want them to remain as children.
जब हमारे बच्चे पैदा होते हैं हमारे घर में, तब हमें ऐसा नहीं लगता कि वो हमेशा छोटे ही रहे.
I as a father, I want my children to grow in every way, in physically, spiritually, in every way. They should grow as per their age.
एक पिता होने के नाते मैं अपने बच्चों से अपेक्षा रखता हूँ कि वो दिन प्रतिदिन उसके प्रभु में और अपनी शिक्षा में बढ़ते रहें.
When we are born again, we are like small. Spiritually, we are born. We are just like a baby.
जब हमारे प्रभु में पूरी तरह से हम आते हैं, जब बॉर्न अगेन बनते हैं, तब हम हमारा जब मन फिराव होता है, तब हम एक बच्चे की तरह ना ही रहते हैं.
सो जस्ट लाइक आई हैव अ डिजायर दैट माई चाइल्ड शुड ग्रो एज पर अर एज एंड नॉट रिमेन लाइक अ बेबी, सेम वे माई हेवनली फादर वॉन्ट्स मी टू ग्रो एज आई ग्रो इन एज स्पिरिचुअली ऑल्सो. आई शुड एज आई ग्रो फ्रॉम माई बॉर्न अगेन, व्हेन आई एम बॉर्न अगेन आई वॉन्ट टू ग्रो द सेम वे माई फादर ऑल्सो वॉन्ट्स मी टू ग्रो.
जब मेरा मसीह जीवन का जीवन जब छोटे बच्चे की नाई शुरू होता है, तब मेरा परमेश्वर भी मुझसे चाहता है कि मैं भी एक बच्चे की नाई एक दिन प्रतिदिन उसमें बढ़ूं और मेरी प्रगति हो.
वी ऑल थिंक वी ऑल नो व्हेन वी से व्हाट इज इटर्नल लाइफ, वी थिंक इट इज लिविंग फॉर एवर.
हमारे जीवन में सार्वकालिक जो जीवन होता है उसका हम अर्थ समझ चुके हैं.
इट इज लिविंग फॉर एवर, बट Jesus has clearly specified what is eternal life.
लेकिन प्रभु मसीह हमें इस बारे में बताते हैं कि उस अनंत जीवन का मतलब क्या होता है.
It says in John 17:3.
और यह हम यहुन्ना के 17वें अध्याय में और 3रे वचन में इसके बारे में प्रभु यीशु यहाँ पर हमें सिखाते हैं कि सार्वकालिक जीवन का मतलब क्या होता है.
It says this is eternal life.
कि ये बता यही अनंत जीवन है.
That they may know you.
कि वो आपको पहचाने.
The only true God and Jesus Christ whom you have sent.
कि प्रभु यीशु मसीह जो सच्चा और अद्वैत ऐसा परमेश्वर है जो आपने भेजा है.
So this is what we need to pursue all through our lives till the end of our lives.
और यही हमें अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में हमें अपनी बात को समझकर अपने जीवन में पाना है.
How do I know God?
कि हमें अपने पिता परमेश्वर को कैसे पहचानना है.
हाउ डू आई नो जीसस.
किस तरह से मैं मसीह को जान सकूं.
इट इज थ्रू व्हेन आई रीड द बाइबल आई नो हाउ ग्रेट गॉड इज एंड हाउ ही वर्क्स.
जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तब हम समझते हैं कि परमेश्वर कितना महान है.
व्हेन जीसस वाज ऑन अर्थ ही वाज ऑलवेज ट्राइंग टू हेल्प द डिसिपल्स एंड द अदर्स, एस्पेशियली द डिसिपल्स टू Know who Jesus is.
जब प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन काल में इस दुनिया में थे, तब उन्होंने उनके चेलों को यह बताया था कि वो किस तरह से उनके साथ में रहे. उनका चाल चलन दिखाकर उन्होंने दर्शाया था कि एक परमेश्वर किस तरह से अपने जीवन में रहता है.
In one place where in Mark 6:41,
मरकुस के 6वें अध्याय और 41वें वचन में ये कहा हुआ है.
We know that place. Jesus took 5 loaves and 2 fish.
यहाँ पर बताया है कि वहाँ पर मसीह ने 2 मछलियाँ और 5 भाकरी ली थी.
And he fed the 5,000.
और उन्होंने 5,000 लोगों को वो उन लोगों को खिलाया था उसमें से.
in a normal way we cannot even imagine that happening. It's a miracle that God did there. Jesus did there.
हमारे सांसारिक जीवन में ये एक चमत्कार की तरह है कि 5,000 लोगों को किस तरह से हम खाना खिला सकते हैं.
And we know that after they all ate and were satisfied, there was still so much remaining. Baskets were remaining.
और यहाँ पर हम देखते हैं कि उन लोगों ने खाया और उसके बाद में बहुत सारी 12 वैसी टोकरियाँ बच गई थी.
So and if you read Mark 6:52,
आप अगर पढ़ते हैं मरकुस का अध्याय 6वां अध्याय जिसका 52वां वचन.
After the incident of the case where they ate and were full, then they left. Then when it was evening, the boat was in the middle of the sea. Says in verse 47.
यहाँ पर वचन 47 में ऐसा कहा गया है कि उन्होंने भोजन के बाद में वो एक नाव में बैठकर झील के बीच में थे.
एंड दे वर इन द बोट एंड दे सीइंग देम दे वर स्ट्रगलिंग टू मेक द बोट स्टेडी.
और वहाँ पर एक हवा इतने उनके विरुद्ध नाव के विरुद्ध आ जाती है कि वो तूफान में भंवर में फंस जाते हैं और वहाँ पर वो घबरा भी जाते हैं.
And they saw him and walking Jesus, they saw him and they supposed it was a ghost.
और उन्होंने प्रभु को उस पानी के ऊपर चलते हुए आते देखते हैं और वो डर जाते हैं कि शायद उन्होंने कोई भूत देख लिया.
Imagine, just a while ago Jesus has done a big miracle before them and then after that they thought that Jesus was a ghost. They couldn't even understand.
आप कल्पना कर सकते हैं कि कुछ समय पहले ही उन्होंने प्रभु को एक चमत्कार करते हुए देखा था, उनके साथ ने भोजन किया और उस दूसरे ही पल में वो उनको भूल गए और उन्हें पहचान भी नहीं पाए.
And then Jesus said in the 50th verse, "Take courage, it is I, do not be afraid."
और फिर तुरंत ही प्रभु ने उनको कहा कि भाई धीरज रखो, मैं ही हूँ, मत डरो, धाड़स बनाए रखो.
In the 52 verse it is written, they had not gained insight from the incident of the loaves.
यहाँ पर वचन 51 में ये भी कहा हुआ है कि उन्हें आश्चर्य लगा और वो बता नहीं सकते कि वो किस तरह से प्रभु को पहचान नहीं पाए.
सो दैट मीन्स जीसस इज रियली वांटिंग दैट आई गेन इनसाइट इनटू गॉड्स वर्किंग व्हेन ही डज समथिंग इन माय लाइफ.
तो प्रभु हमें अंतर्दृष्टि देना चाहते हैं कि आप उन्हें पहचाने और उनकी जो कार्य करने की जो क्रिया है उसको आप अंदर से किस तरह से पहचान सकते हैं, उसको जाने.
दे डिडंट गेन इनसाइट एंड देयर हार्ट्स वर हार्डेंड.
क्योंकि वो अंदर से प्रभु को पहचान नहीं पा सकते थे क्योंकि उनके जो हृदय थे वो काफी कठिन बन गए.
If I don't gain insight from God, what God does for in my life continuously, my heart will get hardened.
अगर मैं ये नहीं समझ सकता हूँ मेरी अंतर्दृष्टि से कि मेरे अंदर प्रभु किस तरह से कार्य कर रहे हैं, तो हो सकता है कि मेरा जो मन है वो दिन प्रतिदिन कठिन होता जाए.
Imagine from the time we were born, how many times God has done so many things.
आप समझ सकते हैं कि जब से आपकी पैदाइश हुई है प्रभु के जीवन में, तब से आपको किस तरह से उसने सहायता प्रदान की है.
How many mighty miracles he has done. The devil is always wanting to blind our eyes to what God has done for us.
कितने अद्भुत और अनोखे चमत्कार हमारे जीवन में उसने किए हैं जो हमें कभी भी हम उसकी पहचान भी नहीं कर सकते हैं शैतान के खिलाफ.
He wants to always say God doesn't do anything. Even with Eve he did the same thing, like to tell that God is trying to hide something from you.
शैतान हमेशा आपको झूठ बताते रहता है कि प्रभु आपसे कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश करते हैं.
Sometimes we might have anger against God or that God is not answering my prayer or something like that. We will have that inside.
कभी कभी हमें लगता है हमारा परमेश्वर हमसे क्रोधित है, हमसे वो नाराज है.
दैट इज द टाइम वी नीड टू रिमेंबर वॉट ही हैज डन फॉर अस. वॉट फ्रॉम द टाइम वी वर बॉर्न टिल द टाइम नाउ ही हैज केप्ट अस. सो मेनी थिंग्स ही हैज डन फॉर अस. वी वांट टू रिमेंबर दैट.
और उसी समय हमें ये भी बात रखना है कि हमारा प्रभु परमेश्वर हमारे पिता, हमारे लिए परमेश्वर पिता एक प्यार करने वाला पिता है और वो हमें हमेशा याद रखता है.
There was another incident when Jesus fed the 7 loaves and few small fish.
यहाँ पर दूसरा एक ऐसी हमें घटना मिलती है जहाँ पर 7 वहाँ पर हम loaves मतलब ब्रेड्स और कुछ मछलियाँ प्रभु ने 7,000 लोगों को खिलाई थी.
There it is a little different. If you read from Mark 8,
मरकुस का 8वां अध्याय, यहाँ पर अगर आप पढ़ते हैं इस अध्याय में मरकुस का अध्याय 8 और उसका 8वां वचन.
Here they ate and were satisfied and they picked up 7 large baskets full of what was left over of the broken pieces.
और यहाँ पर भी यही हादसा हुआ कि वो खाकर तृप्त हो गए और शेष टुकड़ों को 7 टोकरे में भरकर उन्होंने उठा लिया.
And then afterwards they started. Then Jesus said, "Beware of the leaven of the Pharisees and the leaven of the Herod."
और तब 11वें वचन में उन्होंने कहा था कि उन्होंने फरसी के लोगों के लिवन से मतलब उनकी दलमुनता से उनसे अपने आप को दूर रखें.
But they didn't understand that Jesus was actually also referring to that what he did, the miracle.
लेकिन अभी वहां पर प्रभु उनको ये भी दर्शा रहे थे कि उन्होंने किस तरह का चमत्कार किया है उनके जीवन में.
That is why then Jesus says in 17th verse, "Why do you discuss the fact that you have no bread? Do you not yet see or understand?"
तभी 17वें वचन में हम प्रभु यीशु उन अपने चेलों से कहते हैं कि आप अपने पास रोटी नहीं है ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्या आप मुझे जानते नहीं हैं?
Do you have a hardened heart?
क्या आपका मन जो है वो कठिन एक पत्थर के कठोर हो गया है?
And then 18th was having eyes, do you not see?
क्या आप आंखें रखते हुए भी वो देख नहीं पाते?
Having ears, do you not hear?
कान रखते हुए भी आप सुनते नहीं हैं?
Do you not remember?
आपको इस बात का स्मरण नहीं है?
This is what I need to remember. This thing is there that I will have this physical eyes. I can see the physical world, but my spiritual eyes, what God is doing is closed.
मुझे इसी बात का स्मरण करना है कि भले ही मेरी जो आंखें हैं वो इस शरीर में हैं, लेकिन मुझे उन चीजों को नहीं देखना है जो मुझे ये दुनिया दिखाती है, लेकिन मुझे परमेश्वर की निगाह से देखना है कि उनके अंतर मन से देखना है.
I can see things with my physical eyes, but is my spiritual eyes open?
लेकिन मुझे अगर शारीरिक आंखें हैं और मैं शारीरिक आंखों से सभी चीजें देख सकता हूँ, लेकिन आत्मा की आंखों से क्या मैं आत्मिक चीजें देख सकता हूँ?
Even hearing also, I can hear what others are saying, but am I here to able to hear what he is trying to say through all this, through all the things that he allows in my life?
मैं अपने कानों से सुन सकता हूँ, लेकिन क्या मैं वो आत्मिक बातें सुन सकता हूँ जो मुझे सुननी चाहिए?
So fast they forgot. This Jesus said, "Do you not remember?" That means they forgot so fast.
हमने यहाँ पर देखा है कि बहुत ही जल्द उसके चेले ये बातों को भूल गए, और यही हमारे साथ भी होता है. बहुत जल्दी हम ऐसी चीजों को भूल जाते हैं.
Jesus had to tell them how many baskets. 19 verses says how many baskets you picked up, and then how many broken pieces you picked up. Everything Jesus asked them to help them to remember.
प्रभु यीशु को उन अपने चेलों को बताना पड़ा कि देखो हमने कितना बड़ा चमत्कार किया, कितने वहाँ पर टोकरियाँ बची, कितने शेष अन्न बचा हुआ है, और यह चमत्कार उनके जीवन में हुआ है ये बात को उन्हें याद दिलाना पड़ा.
And then again he says, "Do you not yet understand?"
और उन्होंने कहा उन्हें कि फिर भी अभी तक आप नहीं समझे क्या?
So this is what God wants in our lives, that we understand and see what God is doing in our lives.
यही बात हमें अपने जीवन में भी समझनी है कि क्या हमारे जीवन में किस तरह से आत्मिक बातें हो रही है, प्रभु हमारे जीवन में किस तरह से कार्य कर रहा है.
Joseph lived in the Old Testament.
यहाँ पर हम यूसुफ के बारे में देखते हैं जो पुराने करार में है.
He didn't have the light that we have.
पुराने नियम में यूसुफ जो था वो वहाँ पर उसे इतना प्रकाश नहीं मिला था उसके जीवन में.
We hear so many messages. When we read the word of God, also God speaks to us so many things about that. But he didn't have a Bible that time.
कलीसिया में हमें बहुत सी बातें सुनने को मिलती हैं, आत्मिक ज्ञान मिलता है, लेकिन ऐसी इन बातों की जानकारी यहाँ पर पवित्र वचन की जानकारी यूसुफ को उस जमाने में नहीं थी.
But very it's like a amazing thing is that he knew God. At least in the level that he is in his age.
उसके अद्भुत बात यह थी कि उसके उस आयु में भी, कम आयु में भी वो परमेश्वर को पहचानता था और उसके कामों को समझ सकता था.
We know that in Genesis 39,
हमने अगर उत्पत्ति अगर देखें किताब उसके 39
in that place where he was arrested and kept in jail.
उस जगह पर हम देखते हैं कि यूसुफ को पकड़ा गया है और उन्हें एक बंदीवास में डाला गया है.
एंड देन ही वाज गिवन ऑल दी लाइक ही वाज गिवन द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द होल हाउस.
और उन्हें उस पूरे बंदीवास की एक सुपरविजन की उपाधि दी गई है. वहां पर हमने देखा है
द वुमन पोटीफर्स वाइफ, शी केम टू टेम्प्ट जोसेफ.
पुटीफर की जो पत्नी थी उसने उसे ललचाने की कोशिश की थी. उसके
जेनेसिस 39:9
उत्पत्ति का अध्याय 39 इसका 9वां वचन.
इट्स रिटन दैट देयर इज नो वन ग्रेटर इन दिस हाउस देन आई एंड ही हैज विथल्ड नथिंग फ्रॉम मी एक्सेप्ट यू.
और इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तुझे छोड़ दिया है. उसकी पत्नी जो उसकी पत्नी है
बिकॉज यू आर हिज वाइफ. या हाउ देन कुड आई डू दिस ग्रेट इविल एंड सिन अगेंस्ट गॉड.
सो भला मैं ऐसी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं?
Even before there was a word saying that about adultery, I don't think it was written this time, But he had that knowledge of God, that what God is like, what he hates.
यहाँ पर हमें समझता है कि वहाँ पर यूसुफ को इस बात की पूरी जानकारी थी कि व्यभिचार का मतलब क्या था, भले ही शायद उसकी आयु कम थी, और यहाँ पर हम कभी पढ़ते नहीं कि व्यभिचार ऐसा शब्द कहीं लिखा हुआ है।
It's written that how then can I do this great evil and sin against God? So much he had that experience with God. That's why he knew so much God hated that sin.
यहाँ पर यूसुफ जो है वो उस पोटीफर की पत्नी को बताता है कि मैं परमेश्वर की नज़रों के सामने इतना बड़ा पाप किस तरह से कर सकता हूँ। ये जानता था कि परमेश्वर को ये पाप करना मतलब किस तरह की सजा दे सकते हैं उसको, और इसके लिए वो डरता था प्रभु को।
विदाउट द होली स्पिरिट ही रैन अवे विद लीविंग हिज क्लोथ्स बिहाइंड,
और बिना किसी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उस जगह से वो परमेश्वर का भय रखकर उस स्त्री से भाग गया था।
so much he had that knowledge of God. That is really amazing thing actually, because he didn't have the Holy Spirit, still he knew God.
उसे पवित्र आत्मा ना होते हुए भी उस कम आयु में भी उसने प्रभु का कितना परमेश्वर का ज्ञान अपने जीवन में रखा था कि जो बात परमेश्वर को पसंद नहीं है वो उसे कतई अपने जीवन में नहीं करनी।
Then when he was sold, we know that he was sold to Egypt by his brothers.
जब उसको मिस्र वासियों को बेचा गया था उसके भाइयों के द्वारा।
And he had done nothing wrong for doing being sold to Egypt.
और उसके लिए उसके बदले में उसने ऐसा कोई पाप ऐसा नहीं किया था या कोई गलती भी नहीं की थी उसके भाइयों के खिलाफ।
But when he went to the dungeon and when he came out and he was kept the Pharaoh raised him up and kept him as a ruler.
लेकिन जब उसका बंदीवास हुआ वो पूरी सारी बुरी पीड़ाओं से उसको गुजरना पड़ा, और जब फारो ने उसे एक बड़ी उपाधि के ऊपर रखा था।
In Genesis 45:5 we read that he says, Now do not be grieved or angry with yourselves because you sold me here, for God sent me before you to preserve life.
उत्पत्ति के अध्याय 45 में यह लिखा हुआ है कि अभी आप उन बातों के ऊपर अपने भाइयों को बोलता है कि आप दुख ना करें, क्योंकि परमेश्वर ने यह सारी योजना मेरे जीवन में करके दी थी।
That is a revelation that he got, because when he was going through that situation, probably God strength. We don't hear the whole life of Joseph. If you read, he never God directly speaks to him.
यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने ये इस बात को जाना कि परमेश्वर ही है जो उसके जीवन में कार्य कर रहा है, कि भले ही उसको ऐसा नहीं, हमने कहीं नहीं पढ़ा है कि परमेश्वर ने उसे डायरेक्टली ऐसी कोई बात की हो।
He was like one of us, like we have not like Abraham and all, they heard directly the voice of God. We hear it in our heart, but not physically. He never heard, but he knew God, and he knew what he went through was God had allowed that to happen.
यहाँ पर हम देखते हैं यूसुफ भी हमारी तरह ही एक आम इंसान था। वो एक अब्राहम की तरह नहीं था कि जिसके सामने आके परमेश्वर बात कर सके, लेकिन वो हमारी तरह ही होने के वजह से हम ये उसके जीवन में अपने जीवन में भी देख सकते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में किस तरह से कार्य कर सकता है।
He also said, God sent me before you to preserve for in 7th verse, God sent me here.
सातवें वचन में हमने देखते हैं कि परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा था कि ये कार्य मेरे जीवन में वो कर सके।
So this is what God wants to, it says, Jesus said in Matthew 5 that blessed are the pure in heart, for they shall see God.
यहाँ पर मत्ती के पांचवें अध्याय में प्रभु यीशु ने कहा है कि जो आशीषित है वो लोग जो अपने हृदय के जो है वो शुद्ध है, और वो जो देखेंगे परमेश्वर को देखेंगे।
Through all the difficulties and problems, can I see God in the background working for me?
सारी कठिनाइयों के बीच में, सारी चिंताओं के बीच में क्या हम इस बात को देख सकते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए, हमारी भलाई के लिए काम कर रहा है?
In that loss that has happened to my life without any reason, sometimes some loss happens. Can I see God working there to deliver me from the love of money?
मुझे जो भी नुकसान मेरे जीवन में हो रहा है जिसकी वजह से मैं बुरी तरह से बेगुनाह हूँ, अनजान हूँ, लेकिन क्या मैं उसके पीछे देख सकता हूँ कि परमेश्वर मेरे जीवन में मेरी भलाई के लिए काम कर रहा है?
Can I see the God who is working in the background when he doesn't answer my prayer when I want it?
क्या मैं देख सकता हूँ कि परमेश्वर मेरे लिए फिर भी काम कर रहा है जब भी मेरी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही है?
Is it it might be to make me more like Jesus, to increase the patience in my life.
ये मुझे मेरे प्रभु यीशु की तरह अपने दिन प्रतिदिन उसके प्रति बना रहा है।
To increase my faith in him.
उसके लिए उसके विश्वास में मुझे बढ़ा रहा है।
When Abraham was told about that he will get a descendant Isaac, He didn't receive it immediately.
जब अब्राहम को बताया गया कि आपको आपके वंश के लिए एक पुत्र दिया जाएगा, तब उसे वहाँ पर झट से कोई पुत्र नहीं मिला.
25 years he had to wait and wait. It is not easy. Even to wait 1 year is so difficult.
25 साल उसे दिन प्रतिदिन उसकी राह देखनी पड़ी और उसके लिए वो पूरी तरह से वहाँ पर विश्वास में स्थिर रहा.
That means he had that faith and patience to wait and wait. Sometimes some promises of God, it might not happen fast, but we constantly, like Abraham, he had that faith. We keep the faith that God will do that work in us.
बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर के लिए हमें विश्वास के साथ में धीरज से हमारी राह देखनी पड़ती है, परमेश्वर की बाट जोतनी पड़ती है, जिस तरह अब्राहम ने अपने जीवन में उसकी राह देखी.
When we look back, when after that lot of time has gone, when we look back, we know, yes, this is what God wanted to do. Yes, this is the reason why God allowed this.
और हमारी प्रार्थना का जब हमें उत्तर मिल जाता है और हम जब पीछे मुड़ के देखते हैं, तब हमें समझ में आता है कि किस तरह परमेश्वर ने दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में काम किया है.
How much faith has increased because of that waiting, and that patience has increased because of that waiting. We'll thank God for allowing it to delay so much.
हमारा विश्वास वहाँ पर कितना बड़ा है, हमारा धीरज उसमें कितना बढ़ाया है प्रभु ने हमारे जीवन में उस चीज को हासिल करने के इस पूरे कार्यवश में.
In Israelites' life, we know that as soon as they did, God did a miracle for them. Immediately, we see them murmuring and complaining when they faced any trouble.
यहाँ पर हम इसराइलियों को देखते हैं कि वो उनके जीवन में जिस तरह से चमत्कार होते हैं और कुछ दिन बीत जाते हैं और दूसरे ही पल वो वहाँ पर पुड़कुड़ाना चालू कर देते हैं परमेश्वर के खिलाफ.
I don't want to take the verses now because it's less time, but I just want to tell that in Exodus 15 that when they crossed over from the Red Sea and they were rejoicing after that.
निर्गमन के 15वें अध्याय में ये लिखा हुआ है कि जिस तरह से उन्हें लाल समंदर को वहां पर क्रॉस किया और उसके बाद में
and then they were rejoicing and suddenly just after the rejoicing they started they couldn't drink the waters of Marah because that was bitter.
यहाँ पर माना इस जगह पर जाने के बाद में उन्होंने हर्षोल्लास किया कि भाई हमने लाल समंदर को पार कर दिया है, इजिप्ट की सेना के ऊपर हमने विजय प्राप्त किया है, लेकिन वहाँ पर उस जगह पर उन्हें जो पानी मिला वो पानी बड़ा ही कड़वा पानी था, इस वजह से उन्होंने कुड़कुड़ाना चालू कर दिया.
They grumbled against Moses, what shall we drink? They forgot God who has so many miracles he did in the Egypt and then again in the Red Sea they passed through, they fought everything in one moment so fast.
वो मूसा के सामने गए और उन्होंने कहा कि हमें कड़वा पानी पीना पड़ रहा है और वहाँ पर वो परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाना चालू कर दिए. इन बातों को वो सभी तरह से भूल गए कि परमेश्वर ने उनके जीवन में कितने बड़े चमत्कार किए.
So this is what we should remember, the devil is always trying to blind our eyes, blind, not to know what God has done, so much he has done for us. Lord help me to, Holy Spirit Lord bring me to my remembrance what God has done for me.
और हमें इसी बात को ध्यान रखते हुए ये देखना है कि हमारे जीवन में परमेश्वर ने कितने अच्छे बड़े बड़े कार्य किए हैं और हाँ चैतान जो है हमेशा कोशिश करता है कि आप इन सभी बातों को भूल जाएं और हमेशा उसके खिलाफ वहाँ पर कुड़कुड़ाते रहें.
When in the life of Jesus, he saw God in every situation in his life.
यहाँ पर हम प्रभु यीशु के जीवन में भी देख सकते हैं कि किस तरह प्रभु परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया.
When he was taken, he was arrested. The chief priests and Pharisees, along with Judas, came to arrest him.
यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु को जो वहाँ पर रोमी सैनिक जो थे वहाँ पकड़ने के लिए आए थे जुदास इस्करियोत के साथ में.
Jesus boldly came forward to be arrested. He didn't shrink back. He was not afraid.
वहाँ पर प्रभु मसीह वहाँ पर उनके सामने धीरज के साथ में गए और पूरे धैर्य के साथ में गए.
He said, I am he. Let them all go. I am he. They asked, who is Jesus? He was ready. Boldly came forward.
अपने चेलों के बीच में से वो पहले आगे गए और बोले कि मैं ही हूँ जो वहाँ पर इनका.
At the same time, Simon Peter. He just cut off that high priest servant's ear.
शिमन पितरस था वहाँ पर, वो एक सैनिक के उन्होंने उसी वक्त में चाकू निकाल के उसका कान काट दिया था.
साइमन पीटर डिडंट हैव इनसाइट इनटू गॉड्स वर्किंग देयर.
वहाँ पर उसके अंतर्दृष्टि कम थी साइमन पीटर की वहाँ पर कि उन्होंने वो इसको नहीं पहचान पाए कि किस तरह परमेश्वर ये कार्य कर रहा
है. जीसस सेड वन वर्ड देयर इन जॉन 18:11 दैट द कप व्हिच द फादर हैज गिवन मी शैल आई नॉट ड्रिंक इट.
यहाँ पर यूहन्ना के 18वें अध्याय और 11वें वचन में कहा है प्रभु यीशु ने कि परमेश्वर ने जो मुझे प्याला दिया है शायद वो किसी और को पिए नहीं जाएगा.
I heard this phrase from Brother Zach message that it says that it is like a postman who looks ugly comes with a gift. You don't say the postman is ugly so I don't want the gift.
यहाँ पर ब्रदर जैक ने एक बार उनके मैसेज में कहा था कि ये एक तरह का डाकिया है जो उसका एक आपको डाक लेके आता है, लेकिन आपको ये आपका एक उसका एक जो इनाम है जो आपको भेजा गया है वो आप इसलिए नहीं ठुकरा सकते कि डाकिया जो है वो बदसूरत है.
द बॉस द फादर हैज गिवन मी माय ऑफिस, ही मे नॉट बी परफेक्ट बट इट इज लाइक अ पोस्टमैन हु गॉड हैज गिवन मी. But God wants to change me through that person.
मेरे कार्य के क्षेत्र में जो मेरे बॉस है वो बड़े ही एक असिद्ध इंसान हो सकते हैं, लेकिन प्रभु परमेश्वर ने उन्हें मेरे लिए दिया हुआ है तो वो एक प्रकार के मेरी पारितोषिक के समान है.
That is what we need to learn. God is in control of everything. God, it's God who is doing everything.
हमें ये हर एक हमारे कार्य क्षेत्र के पल में ये समझना है कि प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में इस तरह से कार्य कर रहा है कि कोई भी व्यक्ति हमारे जीवन में जो आता है वो एक उसका एक कार्य का भाग है.
Sometimes children, there will be some children who are always irritating. God keeps them like that only to change us.
बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे घर में बच्चे जो होते हैं हमें परेशान करते रहते हैं और वो शायद हमें इसलिए परेशान करते हैं कि प्रभु चाहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ कर सके, हमें बदल सके.
That means God wants to help me to bear with that and be patient. To learn patience.
और परमेश्वर चाहते हैं कि मुझे उनके साथ में धीरज के साथ में अपना संयम बनाते हुए उनके साथ में उस तरह से रहना है जैसा मेरा परमेश्वर मुझे बना रहा है.
So whatever things that we think are not good for us, it might be allowed, arranged by God to make us and to break us, break our pride and ego and all those things. He wants to break us. That is the reason why he allows that.
तो जो भी बुरी चीजें अगर हमारे जीवन में हम समझते हैं कि वो उपलब्ध है वो इसलिए है कि वो आपको कहीं ना कहीं आपके अहंकार में तोड़ रही है, आपकी जो अंदर जो बुराई है जो प्रभु के समान नहीं है उस चीजों को खत्म करने की कोशिश है.
So maybe ask God to open our eyes to see that. As Jesus said, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Lord, I want to see you in every situation, in the difficult situations, in the problems I face, in the things that I don't like that happens. It's all God who is doing it for my good.
और अपनी अंतरात्मा की दृष्टि से आप इन बातों को पहचानिए कि क्या है वो चीज़ें मेरे जीवन में जो बिल्कुल प्रतिकूल है, जो मेरे जिनसे मैं पूरी तरह से उखड़ा रहता हूँ, जो मेरे लिए कभी कभी इतनी असामान्य ऐसी साबित होती है, लेकिन वो सारी चीज़ें मुझे उसके और करीब में लाती है, मुझे उसमें और बढ़ाती है.
Paul says in Ephesians that in 1:18 that I pray that the eyes of your heart may be enlightened.
यहाँ पर इफिसियों की किताब इसका पहला अध्याय 18वें वचन में पौलुस कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी अंतरात्मा की आंखें खोले और प्रकाशमान हो.
What is the surpassing greatness of his power toward us who believe?
उसके अद्भुत और उसके महान ऐसे जो कार्य करने की क्षमता है उसको आप पहचाने अपने जीवन में जो कार्य कर रही है.
In one example, I don't want to, it's just a practical example. What is his power to give me a job when the job market is down?
क्या है वो शक्ति जब मुझे यहाँ पर अगर आप बोलेंगे हमारे मार्केट प्लेस में इतनी आर्थिक मंदी होने के बावजूद भी आपको नौकरी मिल सके?
What is this power that he can change such a proud person into a humble person?
क्या है वो शक्ति जो आप एक अहंकारी इंसान होने के बावजूद भी आप एक नम्र और लीन इंसान बन जाते हो?
What is this power in me that he can change me and make me more like Jesus? It's a power of God that changes us.
वो कौन सी ऐसी शक्ति है जो मुझ में ऐसे कार्य करेगी कि मैं वहाँ पर प्रभु यीशु के समान दिन प्रतिदिन बनता जाऊँ?
This power of God is only for those who believe that God can do this work.
ये परमेश्वर की ऐसी अद्भुत शक्ति है जो उस पर विश्वास करते हैं वो उनके लिए ही कार्यान्वित.
He can change me even though now it doesn't look true, but I just trust him that he will change me. He has got the power to do that work.
मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर की वो अद्भुत शक्ति मुझ में कार्य कर रही है जो दिन प्रतिदिन मुझे बदल रही है, उसके समान बना रही है.
It says in that in the down Ephesians 1:18 down, if you read, it says that that power was which raised Jesus from the dead.
यहाँ पर एफिसियों की 18वें अध्याय में यहाँ पर नीचे वचन में ये भी लिखा हुआ है कि यही वही अद्भुत शक्ति है जिसने प्रभु यीशु को मरण से उठाया था, जिलाया था.
It is a power of God that raises us from all sin in our lives.
ये परमेश्वर की वो शक्ति है जो हमें अपने पूरे पापों से उठा लेती है.
It is not with my own self strength, determination. No. Lord, I trust you that you will save me from my sin.
ये मेरी खुद की शक्ति कोई नहीं है जो मुझे वहाँ अपने पापों से छुटकारा प्राप्त करके दे सकती है. ये परमेश्वर की अद्भुत शक्ति है जो मुझे इन सारे चीजों से इजाद प्राप्त कर दे.
We might not have that insight, we might not have that light, but we can ask God, Lord, open the eyes of that prayer that Paul had, that we should have always. Open my eyes, Lord. Open my eyes of the heart of understanding to know how God works.
हमें अभी ये बातें इतनी समझ में नहीं आती होगी, लेकिन अंतरात्मा की दृष्टि से आप अपने प्रभु को मांगिए कि वहाँ पर जिस तरह पौलुस ने प्रार्थना की थी कि मेरे अंतरात्मा की आंखें खोल प्रभु, और मुझे अपना जो कार्य करना है जो मेरे जीवन में, उसको दिखा, उसे दर्शा. और उसी की हमें उमंग रखनी चाहिए, उसी की हमें आशा रखनी है कि किस तरह हम उसके रूप में ढल रहे हैं.
May the Lord do that work in me and in each one of us.
और हम ये प्रार्थना करते हैं कि ये सारी जो कार्य शक्ति है जो हमारे जीवन में हमेशा कार्य करते रहे. आमीन.
ईश्वर के धन्यवाद. प्रभु का धन्यवाद करते हैं. एक वचन मुझे मिला जिसमें फ्रॉम विच आई गेट एनकरेज्ड. सो बेसिकली जेरेमिया 10
यरमिया की किताब
10 चैप्टर 10 वर्स 10
इसका दसवां अध्याय और दसवां वचन.
बट द लॉर्ड इज द ट्रू गॉड. He is the living God and everlasting King. At His wrath the earth quakes and the nation cannot endure His indignation.
हिंदी में पढ़ते हैं. यिर्मयाह इसका दसवां अध्याय दसवां वचन. परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है. उसके प्रकोप से पृथ्वी कांपती है और जाति जाति के लोग उसके क्रोध को नहीं सह पाते.
तो बेसिकली फ्रॉम टुडे मेमोरी वर्स व्हाट यू सी दैट इज बेसिकली डोंट बी अफ्रेड बट बिलीव.
हमारे स्मरण का जो वचन था कि मत घबरा लेकिन तू भरोसा रख, ये आज का वचन जो था हमारा.
बेसिकली यू शुड नॉट अफ्रेड द डेविल और डेविल स्पिरिट व्हाट इज हैपनिंग, बट यू शुड अफ्रेड फ्रॉम गॉड. दैट इज रिटन हियर क्लियरली.
इस वचन से हमें ये पता चलता है कि हमें शैतान का नहीं बल्कि परमेश्वर का भय रखना चाहिए.
क्योंकि व्हाट ही से हिज रात द व्हाट अर्थक्वेक्स हैपेंड एंड नेशन कैन नॉट एंड्योर हिज इंडिग्नेशन.
उसमें लिखा वचन में इस तरह से लिखा हुआ है कि उसका जो प्रकोप है उससे पृथ्वी भी कांपती है.
तो दैट मींस फ्रॉम दैट मेमोरी वर्स इट क्लियरली सेज दैट we always be what is called, we should not afraid any devil or any kind of discouragement or what is happening, the bad thing in our life or in our private life even.
हमारे जीवन में कुछ भी हो सके, कोई शैतान का कार्य हो या फिर कोई भी ऐसी परिस्थिति हो जिससे वो हमें निराश हो सके, ऐसी किसी भी बात से हमें घबराना नहीं है.
But always be afraid from God and believe on God always.
लेकिन हमें हमेशा प्रभु का भय रखना चाहिए और उसके उसको पर भरोसा रखना चाहिए.
सो दैट गॉड सेज अगेन इन ईसाया चैप्टर 40 वर्स 31
और यशया के 40वें अध्याय में
31 वर्स 31
उसके 31वें वचन में ये भी कहा हुआ है.
बट दे हु वेट फॉर द गॉड शैल रिन्यू हिज स्ट्रेंथ एंड दे शैल mount of the eagle like wings like eagle, and they shall run and not be weary, but they shall wake and not faint.
यहाँ पर यशया के 40वें अध्याय और 31 वचन में यह भी कहा हुआ है कि परंतु यहोवा की जो बाट जो होते हैं वो नया बल प्राप्त किए जाएंगे, उकाब के नाए उड़ेंगे और वो दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे.
सो दैट मीन्स इफ यू डिपेंड ऑन गॉड एंड वी डोंट अफ्रेड एनी डेविल स्पिरिट and always believe on God what wants we should be, then our faith will be more deeper on God, and from that faith we can gain what is written in that verse.
So 31 वचन को अगर हमारे जीवन में हम कार्य करना चाहते हैं तो हमें उसके ऊपर भरोसा रख के उसकी बाट जोतनी है और उसका भय जो है वो हमेशा अपने जीवन में रखना है ताकि हमारे जीवन में हम सारी आशीषें प्राप्त कर सकें.
because some situation what is happened in our life, sometimes some devil spirit who guide the other people to provoke us to do something bad.
कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि कुछ लोगों की वजह से शैतान इस तरह से कार्य करता है कि हमें वो क्रोधित करे.
तो that time if we have enough fear on God, then immediately this thing will come in our mind. No, I have fear because I cannot escape me from God angerness.
यहाँ पर हमें उस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि नहीं, मुझे परमेश्वर का भय हमारे जीवन में सतैव रखना है और हम परमेश्वर के खिलाफ कोई भी पाप ना कर सके.
Because in our private life or in our office or in our what the other don't know what I am doing, but we cannot escape or we cannot hide the God's eye.
हम यहाँ पर हमारे निजी जीवन में हो, हमारे कार्यक्षेत्र में हो, हम किसी भी जगह पे हम परमेश्वर की निगाहों से बच नहीं सकते.
सो दैट वी इफ वी हैव एनफ फेयर देन वी कैन ओवरकम दोस टेम्पटेशन व्हिच आर कमिंग टुवर्ड्स अस.
और हमें अगर परमेश्वर का सच्चा भय है तो हम ऐसी सारी परीक्षाओं के खिलाफ खड़े रह सकते हैं और उसमें विजय प्राप्त कर सकते हैं.
सो दैट देयर इज वन एनकरेजमेंट थिंग व्हिच ऑलवेज एनकरेज मी. This is basically Philippians chapter 4 verse 8.
यहाँ पर मुझे एक जो वचन है वो हमेशा उत्तेजित करता है और वो वचन है फिलिपियों की किताब इसका चौथा अध्याय और इसका आठवां वचन.
तो यह Paul says, finally brother, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, and whatever is lovely, whatever is commendable, and if there is any excellence, if there is anything worthy to praise, think about those things. Then I skip a little bit and practice those things, and the God of peace will be with you, will be with us.
जिसमें आठवां वचन फिलिपियों की किताब चौथा अध्याय आठवां वचन में लिखा हुआ है, निदान हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं, उन सभी बातों को मनभावनी और निदान से आप अपने जीवन में अपनाइए उन सद्गुणों को और अपना ध्यान जो है वो प्रभु की ओर हमेशा लगाए रखिए.
सो दैट व्हाट यू गेट द गॉड ऑफ पीस विल बी ऑलवेज विद अस.
जब प्रभु जो हमारा जो शांति का देव भगवान है वो हमारे जीवन में कार्य कर सकता है.
सो बेसिकली व्हाट इज ऑनरेबल, व्हाट इज जस्ट, व्हाट इज प्योर, हाउ वी कैन जस्टिफाई दोस थिंग्स इन आवर लाइफ.
तो हमारे जीवन में उन बातों को हम किस तरह से पा सकते हैं.
सपोज आई डिड समथिंग in my eyes or in my opinion it should be right, but if I discuss with my elder or any my believer brother or sister, if they says no, this is not acceptable, then you immediately accept those opinion also.
जब हमें अपने जीवन में ऐसा लगता है कि कुछ बातें सही हैं और उन बातों को अगर मैं मेरे वरिष्ठों को बताता हूँ चर्च में कलीसियाओं में के, और उनकी तरफ से मुझे उसके विरुद्ध में कुछ ऐसा बात सुनने को मिलती है कि नहीं यह गलत है, आपको इसको नहीं करना है, तब उस समय मुझे उस तरह की चीज़ को किस तरह से लेना है.
सो वी शुड एक्सेप्ट दोज ओपिनियन फ्रॉम द ब्रदर बिकॉज वी ऑलवेज एक्सेप्ट दैट दिस ब्रदर इज मोर ही हैज मोर strong relation with God. That means that's why he is my elder. That's why I accept him. Yes, this opinion is coming from God through this elder. So that I have to accept these things.
अगर हमें हमारे जो उनकी तरफ से जो उत्तर मिलता है, अगर वो अगर हमें हमारे मन के खिलाफ अगर भी मिलता है, तो हमें इस बात को कभी नहीं भूलना है कि जो कलीसिया के वरिष्ठ जन हैं वो प्रभु के और नज़दीक में हैं, वो हमसे ज़्यादा समझ रखते हैं प्रभु की इच्छाओं के बारे में. तो हमें ऐसी बातों को मानना है और पूरी नम्रता से उन चीज़ों को अपने जीवन में ग्रहण करना है.
सो दैट सपोज आई इन माई लाइफ पर्सनल लाइफ बेसिकली something happened, I have already discussed in, I have told in my testimony, I share my testimony here, in office there is so many temptation and so many people also encourage me, no, there is nothing wrong, you can do that way, you can take this bribe. But when I came to my home and discussed with my wife and discussed my elders, then there is some different reply come.
जब मुझे मैंने पिछली बार भी एक गवाही दी थी कि मेरे कार्यक्षेत्र में कार्य करते समय मुझे काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. एक कुछ मुझे इस तरह के मोह पास दिखाए जाते हैं जिनके बारे प्रति मेरे कुछ अलग विचार है, लेकिन जब भी मैं अपने घर में आता हूँ अपनी पत्नी से अपने कलीसियाओं के वरिष्ठ जनों से जब इस बात को मैं उनके साथ में सलाह मशवरा करता हूँ तो मुझे कुछ अलग तरह की प्रतिक्रिया मिलती है.
सो दैट ओपिनियन आई हैव टू एक्सेप्ट that yes, this is coming from God only. This answer is coming from God through my elders or through my wife or through my some brothers also. That way, that means this is this should be honorable. We have to this is gran jog karna hai. This is I have to honor those opinion.
जब भी मुझे ऐसी कुछ सलाह या भी प्रतिक्रिया मिलती है तो मुझे उसे ग्रहण करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए.
So that we can overcome those bad thing and that then what we get the peace of God always stay with us.
तब हमें परमेश्वर की जो इच्छा है वो हमें हमारे जीवन में पूरी करने की पूरी क्षमता प्राप्त होती है और हमें उसके लिए वजह से शांति भी मिलती है.
So lastly I want to encourage my brother and sister that we all whatever we are doing in our life this should be what is called acceptable through our conscience should be sensitive conscience and that part is it should be acceptable by God and by the other people also who believe God all.
तो भाई और बहनों मैं आपको उत्तर जना देना चाहता हूँ कि जो भी अपने चीज़ें अपने जीवन में आप करते हैं वो सभी को ग्रहणीय हो, सर्वप्रथम वो परमेश्वर को ग्रहणीय हो, तभी हम पूरी तरह से शांति अपने जीवन में पा सकते हैं.
थैंक यू ब्रदर्स.
प्रेज द लॉर्ड. बीते हफ्ता परमेश्वर ने कुछ बातों को मन में डाला और मैं आपके साथ वही शेयर करना चाहती हूँ. याकूब की पत्री उसकी 3:10, वहाँ पे ऐसा लिखा है कि एक ही मुंह से धन्यवाद और सांप दोनों निकलते हैं. तो हम शायद बहुत टाइम धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर को भी धन्यवाद देते हैं, भाई बहनों को भी धन्यवाद देते, शायद हम डायरेक्टली जो साफ है वो नहीं देते हैं, किसी को नहीं बोलते, लेकिन हम बहुत समय ऐसा कुछ बोलते हैं कि जिसके द्वारा जो हमारे सामने हैं उनको डिस्करेजमेंट होता है, निराशा होती है, वो हमारे वजह से दुख होता है. कुरिन्थियन में लिखा है, 1 कुरिन्थियन उसका 1:31 में ऐसा लिखा है कि आप एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों नहीं दे सकते. अगर हम व्यवस्था को पालन करते हैं तो सारे व्यवस्था, ऐसा लिखा है कि याकूब 2:10 में लिखा है कि आप अगर एक बात में चूक जाते हैं तो सारे बातों में चूक जाते हैं. अगर कोई भाई या बहन की वजह से हम उनको कुछ बोलते हैं, शायद कुछ क्षेत्र में हम बहुत अच्छे हैं और कुछ क्षेत्र में वो बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन हम उनको कुछ ऐसा बोल दिए ताकि उनको जाके उनका डिस्करेजमेंट हुआ, उनका बहुत ज़्यादा निराशा हुआ और वो घर जाके उनको शायद मन में कुड़कड़ाहटपन आया, उनके खुद के ही गुस्सा आया, क्या उसका भागीदार हम खुद नहीं होते हैं? याकूब 2:10 में बोलते हैं कि सब व्यवस्था को आप पालन करते हैं लेकिन आप एक बात में चूकते हैं, क्या वो चूक रहे हैं आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने से? क्या उसका कारण हम नहीं है? शायद वो उसका कारण हम है. वचन कहती है 1 कुरिन्थियन 1:31 में कि हम बहुत समय ऐसे बोलते हैं कि अरे मैंने उसको बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत अच्छा जवाब दिया, करारा जवाब दिया जो कुछ भी उसने पूछा. लेकिन 1 कुरिन्थियन 1:31 में बोलता है कि आप घमंड नहीं करो. घमंड हमें किस में करना है? उसमें लिखा है कि ताकि जैसा लिखा है वैसे ही हो, कि जो कुछ करे घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे. तो हमें प्रभु में घमंड करना है. अगर हम किसी और बात में घमंड करेंगे, अपनी बुद्धि में अगर हम घमंड करेंगे, तो वही बात फिर गलतियन 6:3 में भी लिखा है कि क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को ही धोखा देता है. कहीं हम खुद को ना धोखा दे रहे, किसी का ठोकर खाने का कारण अगर हम बन जाए तो शायद परमेश्वर जिस दिन वो न्याय करेगा उस दिन शायद वो हमसे पूछेगा कि आपका वो आत्मिक ओर से गिर गया, शायद उसका कारण आप है। तो बीते हफ्ता परमेश्वर ने मुझे सहायता किया ये समझने में कि किसी का आत्मिक जीवन में ठोकर खाने का कारण हम शायद नहीं बन जाए। थैंक यू।
I thank God for the words we heard today.
परमेश्वर का धन्यवाद हो जो आज हमने प्रभु के वचन से सुना।
I also want to my eyes to be opened, enlightened, to see God in every situation in my life.
मैं भी चाहती हूँ मेरे जीवन में मेरे परमेश्वर की जो कार्य करने की क्षमता है वो मैं अपने आत्मिक आँखों से देख सकूँ।
When we see God in every situation, we won't be impatient.
हम जब भी अपने पर जीवन में जो भी कार्य परिस्थिति देखते हैं हम वहाँ पर उतावले ना बने।
We don't do our own, make our own plans and manipulate the situation or compromise in our situations.
उस उतावलेपन में हम अपने ही तरफ से कुछ अपनी योजनाएं बनाए, अपने ही कुछ काम करें, अपना ही कुछ दिमाग लगाए, ऐसा ना हो।
We know that God will do it in His own time.
हमें पता है कि परमेश्वर उसके समय में वो कार्य हमारे जीवन में जरूर करेगा।
So how God helped Abraham to wait for 25 years.
तो अब्राहम जो अपने जीवन में 25 साल जो था वो किस तरह से उन्हें बांट जोती थी।
Through that he learned patience.
उसके द्वारा उन्होंने अपने जीवन में धीरज को सीखा था।
To wait for God's timing.
तो उन्होंने किस तरह से परमेश्वर की राह देखी थी कि उसके सही समय की।
That we can see afterwards in how for when he is sending his servant to take a bride for his son Isaac.
जब उन्होंने अपने एलियाजार को वहां पर आइज़क इसहाक के लिए वधू देने के लिए जब उन्होंने अपने पूर्वकाल के जो वहां पर उनके जो वंशज थे उनके पास में भेजने के समय में हमने देखा है कि उनके विश्वास और धीरज को हमने देखा है।
He was so old and advanced in age. It's written in Genesis chapter 24:1.
यहाँ पर उत्पत्ति की 24वें अध्याय में यहाँ पर लिखा हुआ है कि इब्राहिम वृद्ध हो गया था और उसकी आयु भी बहुत हो गई थी।
So he was not in a hurry to for his son to get married.
वहाँ पर हमने देखा है कि वहाँ पर इब्राहिम जो था वो काफी जल्दबाजी नहीं करने वाला था कि उसके इसहाक को वधू मिले या फिर उसकी शादी जल्द में हो।
He both of them were very old, but still he was waiting for God's timing.
वहाँ पर इब्राहिम जो था काफी वृद्ध हो गया था लेकिन फिर भी वो सही समय की राह देख रहा था।
He was waiting for God's guidance.
वो वहाँ पर परमेश्वर की जो उसकी जो अगुवाई थी उसके लिए राह देख रहा था।
When Isaac was 37 years old, his mother died.
जब इसहाक जब 37 साल के थे तब वहाँ पर सारा उनकी माँ का देहांत हुआ था।
He was very sad, but still Abraham was waiting for God's guidance to get a wife for him.
वहाँ पर इब्राहिम जो था वो काफी दुखी था, निराश था अपने जीवन में, इसहाक भी निराश था, लेकिन फिर भी उन्होंने परमेश्वर के सही समय की राह देखी थी।
And when he was 40 years, Abraham sent his servant to his native place.
और जब इसहाक जब 40 साल के हुए तब इब्राहिम ने उसके सेवक को उसके लिए वधू लाने के लिए भेजा था।
And the things he was telling the in verse 3, you shall not take a wife for my son from the daughters of the Canaanite among whom I live, but you will go to my country and to my relatives and take a wife for my son Isaac.
जब यहाँ पर 24वें अध्याय के 3रे वचन में इब्राहिम ने अपने सेवक से बोला था कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच में मैं रहता हूँ वहाँ से कोई भी लड़की मत लेना वधू आने के लिए, लेकिन मेरे देश जाना और मेरे लोगों में से एक वधू मेरे इसहाक के लिए लेके आइए।
In verse 6, he's telling, beware that you do not take my son back there.
यहाँ पर इब्राहिम के लिए उन्होंने ये कहा था कि वहाँ पर छठवें वचन में ये कहा था कि चौकस रहे मेरे पुत्र को वहाँ कभी न ले जाना।
And in verse 8 also again, he's telling, if the woman is not willing to follow you, then you will be free from this oath. Only do not take my son back there.
यहाँ पर आठवें वचन में यह भी कहा है कि यदि वह स्त्री तेरे साथ आना न चाहे तो तू मेरे इस शपथ से छूट जाएगा, पर मेरे पुत्र को वहां न ले जाना।
He doesn't want to compromise a little bit also. Even his son is not married, it's okay, but he doesn't want to compromise there.
यहाँ पर उन्होंने कहा कि वहाँ पर किसी भी तरह का उन्होंने प्रभु के वचन के खिलाफ ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। वहाँ पर जो बातें उन्होंने को लगी थी वही उन्होंने करने के लिए अपने सेवक को कहा था। वहाँ पर उसके सेवक ने यह भी कहा था कि क्या अगर वो स्त्री मेरे साथ में नहीं आती है तो क्या मैं आपके पुत्र को उस आपके कुटुंबियों के पास में लेके जा सकता हूँ, इस तरह से उसने पूछा भी था।
But Abraham answered him in verse 7, the Lord, the God of heaven, who took me from my father's house and from the land of my birth, and who spoke to me and who swore to me, saying, to your descendants I will give this land. He will send his angel before you and you will take a wife for my son from there.
लेकिन विश्वास के साथ ने इब्राहिम ने उसका जवाब दिया था वचन सात में, स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से लाकर मुझे इस शपथ खाकर कहा कि यह देश तेरे वंश को दूंगा, वही अपना दूत तेरे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री लेके आएगा।
He was so sure that the God will send his angel before you and show you the right, he will guide you to the right person.
यहां पर उन्होंने पूरी तरह से भरोसा रखा था कि उन्हें प्रभु का दूत जो है वो अपने सेवक के आगे जाकर उस स्त्री को वहां पर उनके साथ में भेजेगा।
In same way that everything has happened according to that only, and God guided the servant and the right place he reached and the right time God showed the Rebecca.
और हमने देखा वहां पर कि उस सेवक को परमेश्वर ने सही राह दिखाई, उसको लेके गया और वहां पर वहां उसी तरह से उस सेवक को रिबेका को प्राप्ति हुई और वो उन्हें लेकर आया।
The way the servant prayed to God, the same sentence she is also saying, drink and I will water your camels also.
और उस सेवक ने परमेश्वर की जो प्रार्थना की थी वही शब्द उस रिबेका ने भी उनसे वही कहे।
God gave that assurance to the servant also that this is the person God has chosen for Isaac.
परमेश्वर ने उस सेवक को भी यह भरोसा दिया कि यही वो स्त्री है जिसको आपको लेके जाना है।
And the best thing that she was also ready to leave that country.
और ये यहाँ से बहुत अच्छी बात ये भी थी कि रिबेका भी जो चाहती थी वो उनके साथ में जाने के लिए तैयार हो गई।
She doesn't want even to stay one more day with her parents and brother.
So, एक दिन भी नहीं रुकना चाहती थी अपने घर में अपने कुटुंबियों के साथ में उस वक्त।
The parents and brother wanted to stay for her to stay at least 10 days because she is going to a far away country.
उस रिबेका के घर वाले चाहते थे कि वो एक दिन और ठहरे और वो बहुत दूर का एक यात्रा करने वाली थी, इसलिए वो चाहते थे कि वो एक रात एक दिन और बहुत रुके उनके साथ में।
10 more days.
10 और दिन रुके उनके साथ में।
But in verse 55, 24 verse 55.
तो यहाँ पर 55 में अध्याय में हम देखते हैं वहाँ पर।
It's written and in verse 58.
और 98 वचन में हमें भी ये देखते हैं।
Then they called Rebecca and said to her, "Will you go with this man?" And she said, "I will go."
तो उनके घरवालों ने रिबका को बुलाकर उससे पूछा, क्या तुम इस मनुष्य के संग जाओगी? तो उसने कहा, हाँ, मैं जाऊंगी।
The same day she is ready to leave that country. So that Abraham's faith, how much he trusted God, and the same way God has arranged everything for his son.
और उसी दिन वो उस जाने के लिए वो उनके सेवक के साथ में तैयार हुई। इतना भरोसा अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर रखा था और परमेश्वर ने भी उसी भरोसे के जैसे ही वहाँ पर कार्य होते हुए हमने देखा है।
That waiting for God, he teaches us to wait patience.
परमेश्वर की राह देखना मतलब हम उसके धीरज के लिए हमें वो तैयार भी करता है।
Again in verse in chapter 25 for about Isaac's life.
अभी 25वें अध्याय में भी हम देखते हैं इसहाक के जीवन में।
He is also waited for a long time to get a children.
और वो भी हम देखते हैं कि उनके जीवन में किस तरह से उन्होंने राह देखी थी उनके भी बच्चे होने के लिए, संतान होने के लिए।
25:20
एक 25वें अध्याय के 25वें में हमने देखा वहां पर
Isaac was 40 years old when he took Rebecca, the daughter of Bethuel, the Aramean of Padan Aram, the sister of Laban.
अब यहां पर हम पढ़ते हैं कि इसहाक जो था वो 40 साल का हो चुका था जिसने रिबका के साथ में शादी की जो बथुएल की बेटी थी और लबान उसका भाई था
21 Isaac prayed to the Lord on behalf of his wife because she was barren and the Lord answered him and Rebecca his wife conceived
21वें वचन में हम पढ़ते हैं इसहाक की पत्नी जो बांझ थी सो उसके लिए वहां पर यहोवा से इसहाक ने विनती की और यहोवा उसकी विनती सुनकर उसकी पत्नी को रिबका को गर्भवती होना पड़ा
This happened when he was 60 years old.
और ये जब हुआ जब वो 60 साल का था इसहाक 60 साल का
After 20 years he got his children.
और 20 साल के बाद में उन इस जोड़े को वहां पर संतान की प्राप्ति हुई
We can see in everyone God allows that waiting period for us to mold us
हम इस प्रकार से उपलक्ष में यह भी जान सकते हैं कि हर एक के जीवन में परमेश्वर एक सही समय की प्राप्ति करने का राह देखने के लिए बोल रहा है आमीन
गुड मॉर्निंग ऑल आई लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक एवरीवन फॉर प्रेइंग फॉर मी स्पेशली द लास्ट 6 मंथ्स हैज बीन रियली डिफिकल्ट आई हैव बीन स्ट्रगलिंग फॉर अ जॉब सो लास्ट वीक आई गॉट टू नो from a company that I've been shortlisted for a position there so I'm really grateful so as we just heard that you know sometimes God allows a certain time for us to go through you know and teaches us patience so over the last 6 months it has been like many times I've gone for interviews and I've been rejected for various reasons so it was like a time when God taught me how to be patient and to trust him although you know you never know when you're going to get a job. So I want to again thank all of you for praying for me.
एक छोटी सी गवाही मेरी तरफ से भी 6 महीने जिस वक्त लिनू ब्रदर का फेज शुरू हुआ था उस पर उसके बाद से मेरा फेज शुरू हुआ कि हमें सैंड माफिया से पहले मुक्ति प्राप्त करके दी इसलिए प्रभु का शुक्रगुजार हूँ और दूसरा जब नौकरी के लिए मुझे भी इंतज़ार करवाया प्रभु ने ऐसा नहीं कि इस बार धीरज को बढ़ाया विश्वास को भी बढ़ाया और एक बात और एक सिखाई जो मैं बताना चाहूँगा कि जो आज भाई बिजू ने हमें बताया कि हमारी परिस्थिति में जो आत्मा की आँखों से हमें जो देखना है हमारे जीवन का कार्य किस तरह से वो करते हैं तो ये दिन प्रतिदिन हुआ हर एक इंटरव्यू में हुआ और ये भी सिखाया कि किस तरह से अगर आपकी आमदनी कम हो जाती है तो उस कम आमदनी में आपको किस तरह से आपके खर्चे रखने हैं और किस तरह से आपको चलना है कैसे आप बोलते हैं ना कि विम्स एंड फैंसीज जो आपकी जो होती हैं जो आपके मन में कुछ ऐसा आता ख्याल आता है कि अरे ये खरीदें वो खरीदें पैसों का सही तरीके से जो इस्तेमाल कैसे कराना है ये परमेश्वर ने सिखाया और मुझे इस बात का बहुत अच्छा एक पाठ सिखाया है प्रभु ने तो मैं उसका शुक्रगुजार हूँ और मुझे भी कल ही के दिन में एक अच्छी कंपनी का ऑफर मिला सो मैं उसके लिए काफ़ी शुक्रगुजार हूँ और जब HR मेरी सैलरी डिसाइड कर रहा था तो उन्होंने उनके भगवान का नाम लिया और मैंने सभी पैनल के सामने प्रभु यीशु का नाम लिया तो मुझे इस बात की बड़ी अच्छी धीरज और अच्छी एक साक्ष्य मैं बोल सकता हूँ कि मुझे बोल्डली विटनेस करने का एक करेज भी परमेश्वर ने दिया और मैं इसके लिए प्रभु का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सही में परमेश्वर कितना भला है इसको आप हमेशा चख कर देख सकते हैं और वो हमेशा आपको आपके जीवन में सभी चीज़ें पूरी करने के काबिलियत को दिखा सकता है ये देखने के लिए आप ज़रूर कोशिश कीजिए कि आत्मा की दृष्टि से आप देखें और साथ ही में सभी परिवारजनों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मेरे लिए प्रार्थनाएं की शुक्रिया
जैसे हमने वी सॉ द मेमोरी वर्स मॉर्निंग हमने वचन सुना कि डरना नहीं है और उसके बाद मतलब बिजू भी वही वचन लेता है कि वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहता है कि डो नॉट बी टेरिफाइड डरो मत एंड परमेश्वर का जो उपस्थिति है हमारे बीच में, आई कुड सी द प्रेजेंस ऑफ अ लॉर्ड इन आर मिड्स स्पीकिंग टू अस, टेलिंग नॉट टू बी अफ्रेड. इफ देयर इज एनी फियर इन अस, गॉड इज टेलिंग नॉट टू फियर. इट्स अ कमांडमेंट फॉर अस नॉट टू फियर. एंड द इनसाइट ऑफ दैट इज दैट माई ट्रस्ट इज इन गॉड. उसका जो अंदरूनी विश्वास ये है कि मेरा जो भरोसा जो है वो प्रभु यीशु मसीह में है. जैसे सिस्टर लीजी ने बताया, अब्राहम का जो विश्वास जो था उतना उम्र होने के बाद भी, बियॉन्ड ही बीइंग सो मच ऑफ यू नो क्रॉस्ड हिज एज बीइंग ओल्ड, स्टिल ही डिड नॉट लीव हिज फियर ऑफ गॉड एंड ही ट्रस्टेड इन द लॉर्ड. एंड सेम थिंग टू जोशुआ ऑल्सो, God spoke and said, "Do not fear. You know, be of good cheer. हंसते हुए रहना है, and not to be embarrassed." ये परमेश्वर का एक वचन हमारे लिए है, and God telling us and leading us. And एक गाना मैं मेरे को याद है, you know, which I heard it last week. जो मैंने पिछले हफ्ते हम लोग पूना गए थे, आई रियली एक्सपीरियंस द दैट गॉड स्पीकिंग, यू नो लाइक वॉट आई नीड टू बी व्हेन आई हैव द इनसाइट ऑफ गॉड इनसाइड मी. मुझे कैसा होना है जब अगर परमेश्वर का जो अंदरूनी दृष्टि मेरे अंदर है, व्हेन आई हैव द इनसाइट ऑफ गॉड, मेरा जो जीवन कैसा रहना है उसके विषय में कुछ वो गाने के शब्द ऐसे है जो मैं पढ़ना चाहता हूँ. तुम जगत की ज्योति हो, तुम दारा के नमक भी हो. तुमको पैदा किस लिए किया है? तुमको पैदा मतलब उसने क्यों किया पैदा आपको इसमें ऐसा, और उसने ऐसा भी दिया है कि उसने इसलिए पैदा किया है ताकि मैं उसका मर्जी को पूरा कर सकूं. और तुमको जीवन इसलिए मिला है कि हमेशा मैं जो है उसका जो इच्छा जो है मैं पूरा करता रहूं. सो परमेश्वर हमें आशीष दे आने वाले दिनों में कि हम परमेश्वर के भय में और जैसे हमने वचन को सुना है उस वचन के अनुसार हम बढ़ते रहें.